हर एकादशी की तरह आज भी हम आलवारों की कथा जारी रखेंगे। पिछली बार महाराज कुलशेखर आलवार इनकी कथा समाप्त हुई और इस बार आठवें नंबर के आलवार अर्थात पेरी आलवार इनके बारे में हम चर्चा आरंभ करेंगे। वैसे इनका और नौवें नंबर के जो आलवार हैं आंडाल जो कि एक महिला थी, इन दोनों का संबंध है क्योंकि आंडाल पेरी आलवार की पुत्री थी। परंतु पहले हम पेरी आलवार की चर्चा करेंगे और अगली बार आंडाल की। पेरी आलवार वास्तव में श्री वैष्णव संप्रदाय में गरुड़ जी के अंशावतार माने जाते हैं। उनका जन्म करीब करीब कलयुग के पहले 50 वर्ष में हुआ और उनका जन्म कृतमाला नदी के तट पर हुआ, श्री विल्लीपुत्तूर नाम के गांव में। ये शहर या गांव बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर भगवान श्री विष्णु के एक बहुत सुंदर विग्रह हैं जिनका नाम है वटपत्रशाही या वटशाही। वट मतलब वटवृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, पत्र और शाही, अश्वत्थ वृक्ष के पत्र के ऊपर शयन करने वाले। वैसे कई बार आपने भगवान के इस रूप के बारे में सुना होगा, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम, वटस्य पत्रस्य जले शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो अपने ही कर कमलों से अपने चरण कमलों को अपने मुख में चूस रहे हैं और ऐसा करते हुए वो वटपत्र के ऊपर जल जो कि जल में है वो शयन कर रहे हैं, ऐसे मुकुंद बाल मुकुंद के ऊपर मैं मेरा ध्यान केंद्रित करता हूं, ये एक श्लोक है। तो खैर ये है वटपत्रशाही। तो इस गांव में पेरी आलवार का जन्म हुआ, एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उनका। उनकी मां का नाम था पद्मा देवी और उनके पिता का नाम था श्री मुकुंद और काफी सुसंस्कृत परिवार था और ब्राह्मण कुल के वैष्णव संस्कृति में वह पाले पोसे गए। उनके दूसरे नाम हैं भट्टनाथ और विष्णुचित्त। भट्टनाथ नाम इसलिए दिया गया कि भट्टनाथ का शब्द का अर्थ है जो ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ हैं या उनके जो नायक हैं। वैसे वेयर वर्ग से उनका संबंध था, जो जिस वर्ग में बांस ये जो चिन्ह है ये इस वंश का एक प्रतीक है या चिन्ह है उनका। और वैदिक संस्कृति में ऐसे बताया जाता है कि ऐसे कई ब्राह्मण कुल होते हैं जो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने पर ऐसे बांस का जो बांस की छड़ी जो है वो स्वीकार करते हैं, न केवल संन्यास लेने पर, वो तो है ही, परंतु जब ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उस समय भी वो ऐसे एक दंड लेता है। और ऐसे दंड के बारे में चर्चा कई जगह है, जैसे कालिदास जो एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे पुराने जमाने के, वो अपने रघुवंश में कहते हैं वेणु दंडम अवलंब्य शैशवे, कि शैशव जो छोटे छोटे बच्चे हैं शिशु हैं वो अपने बड़ों के ब्रह्म जो बांस के दंड हैं उसका आधार लेकर वो खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि उनके उस जमाने में भी ऐसे बड़े जो हैं उनके पास अपने वो बांस की छड़ी दंड रखा करते थे। साथ साथ में धर्म सूत्रों में ऐसे भी बताया गया है वेणवम दंडम आदध्यात, कि जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है तो ऐसे वो बांस का दंड जो है वो स्वीकार करता है। तो इसलिए इनका नाम हो गया भट्टनाथ, और एक नाम इनका था विष्णुचित्त। विष्णुचित्त शब्द से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये नाम उनको क्यों दिया गया, क्योंकि उनका चित्त हमेशा भगवान विष्णु में समाया रहता था, हमेशा कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के स्मरण में उनका मन लगा रहता था, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और भगवान कृष्ण या विष्णु के शुद्ध भक्त के रूप में जगह वो प्रसिद्ध थे, आसपास में सभी लोग जानते थे कि ये कितने शुद्ध भक्त हैं भगवान के। उनकी सेवा थी कि जो वटपत्र शाही हैं उनके लिए वो एक फूल का बगीचा का देखभाल करते थे, और फिर उन फूलों से सुंदर माला बनाते थे, और ये माला भगवान के अर्चा विग्रह को अर्पण करते थे। आप तो जानते हैं कि ब्राह्मणों के कई कार्य होते हैं, निहित कार्य होते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, हर एक वर्ण के अलग अलग निहित कार्य होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए विशेष करके बताया गया है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, उनको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए, दान स्वीकार करना चाहिए, दूसरों को दान देना चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, दूसरों को यज्ञ कराने के लिए सिखाना चाहिए। तो इन सब कार्यों के साथ साथ ब्राह्मणों के लिए एक और कर्तव्य जो कि महत्वपूर्ण था वो ये था कि वो भगवान के लिए सुंदर फूलों की माला बनाया करते थे। जब रामानुजाचार्य की कथा चल रही थी तो आपको स्मरण होगा कि उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिन्होंने तिरुमला में जाकर फूलों के बगीचा बनाने के लिए जो तैयार हो गए थे। जब रामानुजाचार्य ने कहा था कि आप में से कौन तिरुमला तिरुपति जाने के लिए तैयार है और भगवान श्रीनिवास गोविंद के लिए सुंदर फूलों की माला रोज अर्पण करने के लिए, एक फूल का बगीचा देखभाल करने के लिए कौन तैयार है, तो उसमें से अनंताचार्य या अनंतार्य नाम के उनके एक शिष्य ने अपना हाथ ऊपर किया कि गुरुदेव मैं जाने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद अनंताचार्य आजीवन वहीं पर तिलुमरा में रहे अपने गुरु के इस एक आज्ञा का पालन करने के लिए। और उनका कोई कार्य नहीं था, सुंदर फूल उगाकर उनको माला में के रूप में बनाकर भगवान श्रीनिवास को अर्पण करते थे। तो इसी तरह से पेरियालवार भी यही सेवा करते थे भगवान के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के भक्ति मार्ग में फूलों की माला भगवान को अर्पण करना ये कितना महत्वपूर्ण है। आप में से कई भक्त यहां रोज आते हैं, रोज मिलकर यहां फूलों की माला बनाते हैं राधा गोकुलानंद की सेवा के लिए। तो यह बहुत प्रिय सेवा है भगवान के लिए। भगवान को फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र हो तुलसी का पत्ता, फूल हो विशेष करके सुगंधित फूल, ऐसे फूल हमें अर्पण नहीं करने चाहिए जो जिनका सुगंध नहीं हो, जो मुरझाए गए हों, जो पुराने फूल हों, या ऐसे फूल जो कि अशुभ अवसर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्मशान में पाए जाते हैं, या ऐसे सब फूल हमें अर्पण नहीं करने चाहिए। और ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें बताया हुआ है कि भगवान को किस ऋतु में, किस मास में कौन से तरह के पुष्प जो है वो पसंद हैं। शायद अगर ये जानकारी मिल जाए, हम कोशिश कर रहे हैं इस जानकारी को हासिल करने के लिए। फिर यहां पर भी हम ऐसे ही भगवान के लिए अलग अलग फूल अलग अलग समय हम अर्पण कर सकते हैं। हाँ, ऋतु के हिसाब से तो हम देखते हैं कि अलग अलग फूल ही मिलते हैं, कोई फूल ऐसे नहीं है जो 12 ही महीने मिल जाते हैं। तो खैर, ये महत्वपूर्ण सेवा पेरियालवार वटपत्रशाही भगवान के लिए करते थे श्री विल्लुपुत्तूर में। हालांकि वो इतने बहुत शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने बचपन से कभी वेदों का पाठ नहीं किया था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, सुसंस्कृत परिवार था, लेकिन कभी वो गुरुकुल में गए नहीं। इसलिए वैदिक ज्ञान जो है साधारण दृष्टि से देखा जाए तो उनका इतना विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान केवल वेदों के ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व देते हैं। और इसलिए पेरियालार के जीवन में एक ऐसी एक सुंदर अद्भुत लीला हुई जिससे भगवान ने सिद्ध करके दिखाया है कि ठीक है अगर कोई विद्वान है तो अच्छी बात है, परंतु विद्वत्ता से अधिक भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। और जो व्यक्ति वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त है उसको सारे विद्या सारे ज्ञान का सार जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये लीला इस प्रकार से है। दक्षिण भारत में एक शहर है जो बहुत प्राचीन शहर है, जो बहुत प्रसिद्ध है, दक्षिण मथुरा कहा करते थे इस नगर को, आजकल इसको मदुरई शहर कहते हैं, उस जमाने में इस शहर का नाम था कुडल। तो यहां पांड्य जो वंश हैं इनके राजा राज्य किया करते थे, और इस समय के राजा उनका नाम था राजा वल्लभ देव। पांड्य वंश के जो राजाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध थे, न केवल अपनी शूरवीरता के लिए, न केवल क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा राज्य बना लिया था, इतनी बड़ी सेनाएं वगैरह थे, बहुत धनवान थे, परंतु साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। और ऐसे राजाओं के राज्य में भक्ति का विकास बहुत सुंदर तरह से होता था। तो एक बार ऐसे हुआ कि राजा वल्लभ देव ने अपना वेश बदल लिया और अपने राज्य में घूमने लगे, क्योंकि उनको पता करना था कि मेरे राज्य में परिस्थिति क्या है, प्रजा के लिए समस्या क्या है, प्रजा सुखी है या नहीं। ऐसे पुराने जमाने में राजाएं जो हैं वो ऐसे ही वेश बदलकर एक साधारण आदमी की तरह घूमते थे ताकि कोई उनको पहचान नहीं पाए। वो केवल अपने मंत्रियों और जासूसों के ऊपर निर्भर नहीं रहते थे, खुद भी जाते थे गली गली में, सड़क सड़क में जाकर लोगों से मिलते जुलते थे, और क्योंकि उन्होंने वेश बदला हुआ था तो लोग उनको पहचान नहीं पाते थे, और इस तरह से उनको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती थी कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। और प्रभु रामचंद्र ने भी, हम देखते हैं रामायण में, वो भी ऐसे ही करते थे। कौन सी घटना आपको स्मरण है इसमें? जब वो बाहर गए और उन्होंने एक धोबी को देखा, धोबी अपने पत्नी से झगड़ा कर रहा था और क्या कह रहा था कि मैं तो श्री राम की तरह नहीं हूं जो कि अपनी पत्नी को वापस ले ले, हालांकि वो किसी दूसरे के घर में रहकर आई हो। तो प्रभु रामचंद्र को लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, अगर इस वजह से लोग मेरी निंदा कर रहे हैं तो फिर सीता को वनवास में जाना अच्छा रहेगा। तो जो वैदिक काल के राज ऋषि हुआ करते थे वो प्रजा के मत को बहुत महत्व देते थे। आजकल के राजनीति के पद्धति में हम देखते हैं कितना अंतर है। आजकल जो नेता होते हैं प्रजा के मत को केवल 5 साल में एक बार महत्व देते हैं, है ना, और वो है चुनाव के समय। बाकी समय कोई उनको परवाह नहीं है कि प्रजा की दशा क्या है। तो खैर, राजा वल्लभ देव ये वैसे घूम रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक जगह है, एक ब्राह्मण जो है वो शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को जाकर जगाया उन्होंने और पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां पर क्यों आए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं तीर्थ यात्रा के लिए गंगा जी के पास गया था, अब तीर्थ यात्रा समाप्त करके मैं लौट रहा हूं यहां पर। तो राजा ने बड़े आतुरता से उस ब्राह्मण से पूछा कि ये बताइए कि आपने ऐसे क्या सीखा है, ऐसे तीर्थ स्थानों में जाकर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है क्या, मैं सुनना चाहता हूं। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा, वर्षार्थम अष्टो प्रयते तमासान, निशार्थमर्धे दिवसंयतते, वार्धक्य हेतोर वयसान नवेन, परत्र हेतोर यह जन्मनाचा। ये श्लोक का अर्थ है कि वो कह रहे थे वर्षार्थम अष्टो प्रयतेतमासान, वर्षा अर्थो, वर्षा के जो चार महीने होते हैं, बारिश के चार महीने, तो उन चार महीनों के लिए अर्थात उन चार महीनों में आराम करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अष्टो प्रयतेतमासान, आठ महीने काम करना चाहिए। तो व्यक्ति साल में आठ महीने काम करता है, क्यों, फिर चार महीने आराम कर सकता है बरसात के समय। उसी प्रकार से निशार्थ, निशार्थम मतलब रात में आराम से सोए, रात में खुशी से रहे, उसके लिए क्या करता है, अर्धे दिवसम यतते, कि आधा दिन उसको काम करना पड़ता है। अगर व्यक्ति आधा दिन पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करेगा तो रात को अच्छी तरह से सो सकेगा, क्योंकि अपनी आमदनी वगैरह कमाएगा ना। अगर दिन में काम नहीं करेगा, आमदनी नहीं आएगी, तो फिर रात को सोएगा कैसे, भोजन कहां से आएगा। तीसरी बात, वार्धक्य हेतु, कि अगर अपने बुढ़ापे के लिए तैयारी करना है तो वयसान वेन, तो हमें जब युवा अवस्था है तो उस समय परिश्रम करना चाहिए ताकि हमारा बुढ़ापा सुखी रहे। अगर युवा अवस्था में हमने परिश्रम नहीं किया, हमारी बुढ़ापे के लिए तैयारी नहीं किया, तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट हो जाएगा। और अंततः कहने लगे परत्र हेतु इह जन्म नाच, तो परत्र हेतु, तो मोक्ष के लिए, इस जन्म के, इस दुनिया के परे जो है, उसके लिए भी हमें इस जन्म का, इस मनुष्य देह का उपयोग करना चाहिए। कितनी सुंदर उपमा है, देखिए, जिस तरह से व्यक्ति को साल में आठ महीने परिश्रम करने चाहिए, चार महीने बरसात में आराम करने के लिए, जिस तरह से व्यक्ति को आधा दिन परिश्रम करना चाहिए कम से कम रात में आराम से सोने के लिए, जिस तरह से युव अवस्था में व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए आराम से बुढ़ापे में रहने के लिए, ठीक उसी तरह से मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ऐसे काम करना चाहिए जिससे उसको अगले जन्म में आनंद हो, उसे सुख मिले, भगवान के धाम में पहुंच जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। तो ये जब राजा ने सुना तो इससे बहुत प्रभावित हुए और वापस अपने दरबार में चले गए। और उनके राज्य में एक बहुत पवित्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था सेल्वनाम्बी, उनको बुलाया और कहने लगे कि मैं जानना चाहता हूं कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ अर्थात जो इन आंखों से दिख पड़ता है वो सब कुछ मेरे पास है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, प्रजा है, प्रतिष्ठा है, परंतु जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता वो मुझे चाहिए। तो मैं इस जानना चाहता हूं कि जीवन का ध्येय क्या है, कैसे प्राप्त किया जाए। तो सेल्वनाम्बी भी बड़े विद्वान थे, बड़े धार्मिक थे, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, हमारे शास्त्रों में विशेष करके आपस्तंभ धर्म सूत्र में बताया गया है, धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च, कि जो धर्मज्ञ लोग होते हैं मतलब जो विद्वान पंडित होते हैं, मुनि होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो कि वेदों को, ज्ञान को जानते हैं, उनके जो वचन होते हैं, उनके शब्द होते हैं, वो प्रमाण है हमारे लिए। तो उनके वचनों के आधार पर हमें हमारा जीवन बिताना चाहिए और हमें ज्ञान मिल सकता है कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है। तो हे राजन, मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक ऐसी सभा बुलानी चाहिए जिसमें इस राज्य के सारे बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि सब एकत्र हो जाएं और इस विषय के ऊपर सलाह मशवरा हो जाए, चर्चा हो जाए, एक स्पर्धा हो जाए कि कौन सबसे सही उत्तर दे सकता है। देखिए, पुराने जमाने में इस तरह की चर्चाएं हुआ करती थी। आजकल आप टेलीविजन खोल के देखिए तो खेल क्रीड़ा के ऊपर, राजनीति के ऊपर चर्चा हमेशा चलती रहती है। तरह तरह के विशेष लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, जो दक्ष होते हैं उस विषय में, उनको बुलाया जाता है कि आज आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, अभी जो सरकार ने बजट किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो सब जगह चर्चा जो है ऐसे ही विषयों के ऊपर चलता है, आर्थिक विषय के ऊपर, राजनीति के ऊपर, खेल क्रीड़ा के ऊपर। लेकिन ऐसे आजकल चर्चाएं कहां दिखाई पड़ती हैं कि चलो जीवन का ध्येय क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ऐसे कोई चर्चाएं होती हैं? कोई नहीं कर रहा है आजकल। परंतु वैदिक सभ्यता में ये प्रथा थी कि बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता था, ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था एक स्थान में, और सब मिलकर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा किया करते थे। हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो तुरंत वो निकल पड़े, अपना राज वगैरह सब कुछ उन्होंने त्याग दिया और गंगा के तट पर पहुंच गए। और ये खबर सुनकर जगह जगह से, न केवल पृथ्वी लोक से परंतु ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों से ऋषि मुनि वहां पर जल्दी ही आए, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान को व्यवस्था करने वाले हैं, कोई सुंदर कथा होने वाली है, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा करने वाले हैं परीक्षित महाराज के लिए, और सभी लोग सुनना चाहते थे। जब परीक्षित महाराज वहां पहुंचे तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि मैं अभी मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है, उसको कैसे, कौन से विषयों के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो सारे ऋषि मुनियों में मतभेद हुए, कोई कह रहा था ऐसे, कोई कह रहा था वैसे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने सारे विरोधाभास, इनका विरोधाभासों का समन्वय कर दिया और श्रीमद् भागवत का शुद्ध भक्ति का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। उधर वहां सूत गोस्वामी बैठे थे, जब श्रीमद् भागवत का कथन समाप्त हो गया तो वो निकल पड़े, नैमिषारण्य पहुंचे, वहां भी ऋषि मुनि एकत्र हुए थे, वो भी ऐसे ही विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। फिर सूत गोस्वामी ने वहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जो कि उन्होंने सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। कहने का मतलब है कि वैदिक सभ्यता में जगह जगह ऐसे पाया जाता था, लोग एकत्र होकर आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा किया करते थे, और जो बड़े बड़े लोग थे जैसे राजा वगैरह, साधारण आदमी के रूप में बैठकर वो सीखते थे, कुछ सुनते थे। और जब कोई राजा के दरबार में ऐसे कोई ऋषि मुनि आते थे तो उनका बड़े धूमधाम से स्वागत किया जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि भक्तों का स्वागत कोई नहीं करता है, बाहर बीवेयर ऑफ डॉग सिग्नल वो लिखा जाता है, कुत्ते से होशियार रहो, कोई अंदर नहीं आना। कोई राजनीतिक नेता भी सही तरह से सम्मान नहीं करता है भक्तों का। कितनी परिस्थिति में बदल आ गया है। तो राजा सहमत हुए इस बात से, उन्होंने सारे राज्य में घोषणा कर दी और जितने भी बड़े बड़े मुनि ऋषि विद्वान थे, पंडित थे, सबको निमंत्रण दिया गया कि कृपया आप आइए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, एक शास्त्रों के ऊपर आधारित एक एक स्पर्धा हो, समझिए ये होने वाला है। तो जगह जगह से पंडित आने लगे। उधर श्री विल्लुपुत्तूर में पेरियालवार अपने रोज की सेवा में मग्न थे, भगवान के लिए सुंदर फूलों की माला बना रहे थे। उनका मन तो बड़ा शांत था, लेकिन वटपत्रशाही भगवान का मन शांत नहीं था। उन्होंने सोचा कि इस स्पर्धा में, इस सभा में मेरे भक्त को भेजना चाहिए, मेरे भक्त का गौरव होना चाहिए, और मेरे भक्त को मैं एक पात्र बनाना चाहता हूं मेरा ही गुणगान कराने के लिए। हां, अभी देखा जा रहा है कि ये मनुष्य समाज जो है ये बहुत जल्दी परम सत्य को भूल जाता है, इसलिए बार बार मनुष्यों को याद दिलाने की आवश्यकता है। इसलिए अभी मैं मेरे भक्त पेरियालवार को भेजना चाहता हूं कि वो वहां जाकर सभा में ये जो परम सत्य है इसकी स्थापना अच्छी तरह से कर ले। तो वह स्वप्न में आए पेरियालवार के, और पेरियालवार से कहा कि जाओ कूडल नगर में, वहां एक स्पर्धा होने वाली है, शास्त्रों के ऊपर आधारित एक वाद विवाद चर्चा होने वाला है, और तुम जाओ वहां पर और मेरा गुणगान करो। तो ये सुनकर पेरियालवार हैरान हो गए, वो कहने लगे कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपका निर्णय गलत है। कहां मैं, एक साधारण अनपढ़ आदमी जिसने कभी वेदों का पाठ नहीं किया है, और कहां वो बड़े बड़े विद्वान जो वहां पर आने वाले हैं, और मेरे हाथों को देखिए, ये सब अस्त्र औजार चला चला के बगीचे में मेरे हाथों की कितने क्या दशा हो गई है देखिए। मेरे को ऐसे सेवा आप क्यों दे रहे हैं? मेरे लिए तो साधारण ऐसे जो सेवा है, कुछ साधारण जैसे झाड़ू मारना हो, कुछ फूल काटना हो, कुछ ऐसे करना, ऐसी सेवा बोलिए। बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाकर वेदों के ऊपर उपदेश करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वटपत्र शाही बोलने लगे, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम केवल जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, वहां जाकर क्या होगा वो मैं देखूंगा ना, तुम क्यों परवाह करते हो, तुम केवल जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। तो स्वप्न से जाग गए पेरियालवार, आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत वहां से निकल पड़े और चले कुडल नगर में। जब कुडल नगर में पहुंचे तो राजा के दरबार में आ पहुंचे और जब राजा ने और सेल्वन अंबी ने उनको देखा कि जो परम भक्त पेरियालवार वहां पर आ रहे हैं, तो वो उठे और जल्दी से उनके पास में गए, पूरा दंडवत प्रणाम किया और उनको अंदर स्वागत किया। इतने अच्छे तरह से स्वागत किया, इतने सम्मान से कि अन्य विद्वान जो वहां पर उपस्थित थे वो बड़े हैरान हो गए, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि राजन, इस व्यक्ति को तो वेदों का एक शब्द भी नहीं मालूम, इसने वेदों का पाठ कभी किया नहीं है, कभी गुरुकुल में गया नहीं है, किसी गुरु के नीचे इसने पढ़ाई नहीं की है, और हम सब बड़े बड़े विद्वान पंडितों की उपस्थिति में आप ऐसे साधारण व्यक्ति को जो कि फूलों की माला बनाता है उसको आप इतना सम्मान दे रहे हो, ऐसे स्वागत कर रहे हो। तो उसमें सेल्वन अंबी को अच्छा नहीं लगा, तो सेल्वन अंबी तुरंत उठे और उन्होंने दंडवत किया पेरियालवार को और पेरियालवार से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कृपया आप वेदों के ऊपर कुछ उपदेश दीजिए हमें। तो उसमें पेरियालवार खड़े हो गए और खड़े होकर वो बोलने लगे, वो कहने लगे, आप में से जो भी यहां उपस्थित है कृपया ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि मैंने वेदों का पाठ नहीं किया, लेकिन सारे वेदों के अक्षर जितने भी हैं वो सब मेरे आंखों के सामने मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, और ये वेदों का सत्य, वेदों के वाक्य परम सत्य हैं, इस बात की श्रद्धा मुझे पूरी तरह से है। वैसे अक्षरों की शुरुआत अ से होती है, भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मी, अ अकार, अ आ ई ई, तो सारे अक्षरों की शुरुआत अ से होती है, और भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मी कि मैं अ अक्षर हूं, अ के बिना कोई भाषा नहीं हो सकता है ना, कोई भी शब्द बोलिए अ के बिना हो सकता है नहीं। तो वास्तव में कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं मैं ही अकार हूं। फिर आगे पेरियालवार कहने लगे कि वास्तव में अ जो है वो भगवान विष्णु का चिन्ह है, उनका प्रतीक है, और ये विष्णु और नारायण एक ही हैं, विष्णु नारायण कृष्ण ये एक हैं, वही परब्रह्म हैं, उन्हीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा ही इन ब्रह्मांडों का पालन होता है, और ब्रह्मांडों का विनाश करने के बाद इस सारे तत्व को वो अपने आप में समेट लेते हैं, वो सब चीजों के कारण हैं, लेकिन उनका कारण कोई नहीं है, और जो व्यक्ति वास्तव में मुक्ति चाहता है उसको केवल इस भगवान की ध्यान करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनके अलावा और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। और ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, और न केवल ये अलग अलग वेदों में है परंतु अन्य स्मृतियों में भी है, अन्य श्रुतियों में भी है, पराशर मुनि भी इस बात की पुष्टि करते हैं, और महाभारत में वेद व्यास भी इसकी पुष्टि करते हैं, स्वयं जो मनुष्य समाज के लिए कानून प्रदान करने वाले मनु भी इस बात की पुष्टि करते हैं। मैं आपको अब कितनी ऐसे उदाहरण दूं, कितना और प्रमाण आपको प्रस्तुत करूं, हजारों हजारों ऐसे प्रमाण हैं श्रुतियों में और स्मृतियों में। और इस प्रकार से पेरियालवार का जो उपदेश है वो चलता गया चलता गया चलता गया, और इधर से श्लोक बोले उधर से श्लोक बोले, और जैसे जैसे वो भाषण देते जा रहे थे जो बड़े बड़े विद्वान वहां पर आए थे वो सब प्रतिमा की तरह देखते रह गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये व्यक्ति जिसने कभी वेदों का पाठ नहीं किया, कभी गुरुकुल में नहीं गया, शायद पढ़ना भी नहीं जानता, लिखना भी नहीं जानता, ये इतनी विद्वत्ता से बोल रहा है कि हमें भी इसके लिए कोई उत्तर नहीं है, और इतने दक्षता से सिद्धांत को स्थापित कर रहा है, और उसी तरह से सभी लोग किसी के अंदर उनके विरोध करने का साहस नहीं हुआ, एक शब्द भी कोई नहीं बोल पाए, और आश्चर्यचकित होकर सभी लोग मुंह खोलकर केवल देखे जा रहे थे। ये बोले जा रहे हैं पेरियालवार, गोमुख से जैसे गंगा बहती है वैसे पेरियालवार के मुख से वेदों के वचन और श्लोक जो है वो बहते जा रहे थे। उस समय इस चमत्कार के ऊपर और एक चमत्कार हुआ। जब राजा वल्लभ देव ने ये घोषणा की थी कि एक स्पर्धा हो जाए या एक चर्चा वाद विवाद हो जाए विद्वानों के बीच में, तो उन्होंने ये भी तय किया था कि जो इस स्पर्धा में विजयी होगा उसको बहुत धन मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। और उन्होंने बहुत सारा धन जो है एक कपड़े में बांधकर ऊपर एक तोरण से लटकाया हुआ था जो कि काफी ऊंचा था। और राजा ने कहा था कि जब विजयी व्यक्ति होगा तो उसके हाथों से कटवा देंगे। तो जब पेरियालवार इस तरह से बोले जा रहे थे और कोई विद्वान जो है उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, सभी चुप बैठे हुए थे, तो इस चमत्कार के ऊपर दूसरा चमत्कार ये हुआ कि जो धन की जो थैली है जो ऊपर थी वो अपने आप नीचे आ गई। नीचे आते 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 इतनी ऊंचाई पे आई कि पेरियालवार आसानी से उसे हाथ बाहर करके उसको निकाल सके, और उस थैली को लेकर उन्होंने खोला और उस धन को स्वीकार कर दिया, क्योंकि धन उन्हीं के लिए था। और जब यह दृश्य देखा सबने, तो उस समय सभी लोग उठ पड़े। पहले तो प्रतिमा की तरह बैठे थे, अब जैसे मानो बिजली का शॉक लगा सब उठ पड़े इस दृश्य को देखकर, और उठे सभी लोग दौड़ते हुए पेरियालवार के पास आए, उनमें से राजा भी आए, राजा वल्लभ देव। सभी ने दंडवत प्रणाम किया पेरियालवार के सामने, और दंडवत करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए उधर। अब ये जो घटना है, आश्चर्यचकित किन लोगों को कर रहा था, जो कि भक्ति के सिद्धांत को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान उसको अंदर से ही सारा ज्ञान जो है प्रदान कर देते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम एवं असम्मोधो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो कहते हैं, यो माम एवं असम्मोधो जानाति पुरुषोत्तमम, कि हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति असम्मोध मतलब बिना संदेह के ये जान लेता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष मैं हूं, स सर्वविद, वो व्यक्ति सब कुछ जानता है। अर्जुन देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि मैं ही परम सत्य हूं, वो सब कुछ जानता है। सर्वविद, विद मतलब विद धातु, जानना, विद धातु से विद्या, वेद, विद्वान, ये सारे शब्द आते हैं। सह मतलब वो सर्वविद, सर्वभावेन भारत, तो ये सारे अपने पूरी भावना से मेरा भजन करता है। भजति माम सर्वभावेन, इसका मतलब है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, हमें जानना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है। कहने का मतलब है कि जो जानने के लिए योग्य है, जो उचित है, वो सब जानता है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान कहते हैं कि वेदों को जानने का उद्देश्य ही मैं हूं, वेदांत को मैं जानता हूं, और वेदांत की रचना करने वाला भी मैं हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतिहास में भी देखा गया है, कि वेदों का पाठ करते करते मंत्रों में और इस वेदों के पाठ में जो विद्वान होते हैं वो इतने खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इस वेद का उद्देश्य क्या है। भगवान ने स्पष्ट बताया वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः। अगर वेदों को पढ़कर कोई व्यक्ति मुझे नहीं जाने, मेरा भक्त नहीं बने, तो फिर उसके वेदों का पाठ जो है वो व्यर्थ है। ये छोटी लीला जो है आपने अवश्य सुनी होगी, जो प्रभुपाद के संदर्भ में हुआ था कि एक बार प्रभुपाद से मिलने एक चतुर्वेदी जी आए थे। चतुर्वेदी जी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पंडित थे। आप तो जानते हैं अलग अलग पंडितों को अलग अलग पदवी दी जाती है, कोई वेदी है, कोई द्विवेदी है। वेदी जो एक वेद जानता है, द्विवेदी जो दो वेद जानता है, त्रिवेदी जो तीन वेद जानता है, और चतुर्वेदी जो चारों वेद जानता है। तो ये चतुर्वेदी जी आए थे प्रभुपाद जी के पास और उनके साथ चर्चा कर रहे थे। इधर बहुत वेदों के श्लोक बोले जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा कि शायद इनके हृदय में थोड़ा घमंड हो गया है कि मैं सारे वेदों का पाठ कर सकता हूं, मुझे वेद मालूम है। तो अचानक प्रभुपाद ने उनको रोका और कहा, चतुर्वेदी जी ये बताइए भगवान कौन है। तो चतुर्वेदी जी अपने श्लोकों के प्रभाव में थे, अचानक उनके प्रभाव को जब रोका गया और ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान कौन है, वो अपने रास्ते में रुक गए। अरे ये कैसा प्रश्न पूछ दिया। वो कहने लगे, स्वामी जी आप ऐसा प्रश्न कहेंगे तो फिर अब क्या, और रुक गए। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, आप रुकिए। फिर उनके शिष्यों के बच्चे जो है थोड़े इधर उधर खेल रहे थे, शरारत कर रहे थे, उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। पास में बहुत प्रसाद पड़ा था कृष्ण भगवान का, अच्छे अच्छे रसगुल्ले, संदेश वगैरह। तो उन्होंने संदेश ऐसे रखाया और बच्चों ने देखा कि हमको शायद संदेश मिलने वाला है, हमको मिठाई मिलेगी, तो जल्दी से भाग कर आए। और जब पास में आए तो प्रभुपाद जी ने वो रसगुल्ला पीछे कर दिया और कहा कि पहले यह बताओ कि भगवान कौन है। तो सारे बच्चों ने एक आवाज में कहा, श्री कृष्ण परम सत्य है, श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े खुशी से उनको वो सारा कृष्ण प्रसाद दे दिया और चतुर्वेदी जी से कहने लगे कि देखिए चतुर्वेदी जी, आप जो चीज को नहीं जानते हैं, जिस चीज को ये बच्चे भी जानते हैं। आप चतुर्वेदी जी हैं, आप सारे वेदों को जानते हैं, चारों वेद को जानते हैं, लेकिन चारों वेदों का सार क्या है ये बच्चे जानते हैं। हालांकि इन बच्चों ने वेदों का पाठ नहीं किया है, लेकिन जिस चीज को आपको जानना चाहिए आप नहीं जानते। लेकिन ये बच्चे जो है विदेशी मेरे शिष्यों के बच्चे हैं, नहीं ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन इनको ये मालूम है कि परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण है। तो जब व्यक्ति बहुत जन्मों से ज्ञान अर्जन कर लेता है, तब अगर उसका भाग्य हो तो ये समझ पाएगा कि भगवान कृष्ण ही परम है और उनकी भक्ति करना ही सर्वस्व है। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसे व्यक्तियों को महात्मा कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में और एक भी श्लोक है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यस्मिन् विज्ञाते, जिनको जानकर सर्वम एवं विज्ञातम भवति, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जिनको जानकर सब कुछ ज्ञात हो जाता है वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेरियालवार हालांकि कोई वेद पाठशाला में नहीं गए थे, वेदों के विद्वान नहीं थे साधारण दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु वेदों का सार उनके हृदय में प्रफुल्लित हो चुका था। परम सत्य जो है वो केवल पुस्तकीय ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है, हालांकि किताबों को पढ़ना, उनका पठन करना बहुत आवश्यक है, परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल हमने भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए तो हम शुद्ध भक्त हो गए, हम बहुत ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, साथ साथ में हमें भक्ति भावना की अनुशीलना करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि परम सत्य भगवान अपनी कृपा करके भक्त के हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि तेषां, जो लोग सतत मेरे सेवा में रहते हैं, तेषां सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त है मेरी सेवा में, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो बड़े प्रीति से मेरे सेवा में लगे हुए हैं। ददामी, मैं भेंट देता हूं, दान देता हूं उनको बुद्धि योगम, वो बुद्धि योग जिससे कि ये नमाम उपयांति थे वो मुझ तक पहुंच सके। और एक उदाहरण हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं और वो है ध्रुव महाराज का। आप ध्रुव महाराज की कथा जानते हैं, जब वो 5 साल के बालक थे, अपनी विमाता के कठोर वचनों को सहन न करके उन्होंने ठान लिया कि मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जो कि न मेरे पिता न मेरे दादा लेकिन उनके पिता ब्रह्मा जी के राज्य से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। एक 5 साल का बच्चा ऐसे संकल्प करे कोई सोच भी नहीं सकता है। परंतु ध्रुव महाराज ने न केवल ऐसा संकल्प किया लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए जंगल में चले गए और तपस्या की। तपस्या करने के बाद नारद मुनि के आदेश के अनुसार जब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के ऊपर ध्यान किया तो स्वयं भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उस समय ध्रुव महाराज की आंखें खुल गईं। वैसे ध्रुव महाराज अपने ध्यान को परिपक्व कर चुके थे उस समय और अपने हृदय के कमल में वो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे थे। परंतु अचानक ध्यान भंग हो गया, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो देखा कि जिस भगवान को वो अंदर देख रहे थे हृदय में वही भगवान अब बाहर आए हैं, बाहर प्रकट हुए हैं उनकी आंखों के सामने और सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए उनके शरीर में। उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गया, वो बोल नहीं पाए, एक शब्द भी मुंह से निकल नहीं पाया। जब व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है कभी कभी तो वो बोल नहीं सकता है ठीक से, तो ध्रुव महाराज की भी यही दशा हो गई। ध्रुव महाराज भगवान का गुणगान करना चाहते थे लेकिन मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। और साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि ध्रुव महाराज कोई पंडित नहीं थे, उन्होंने गुरुकुल में जाना शुरू भी नहीं किया था। वैदिक पद्धति में बच्चे जो होते हैं वो गुरुकुल में 5 साल की उम्र से पहले नहीं जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने गुरुकुल में जाना शुरू भी नहीं किया था। तो ध्रुव महाराज को कहां से सब कैसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता था कि उन्होंने वो ऐसे भगवान का गुणगान कर पाते। तो ध्रुव महाराज केवल देखते ही रह गए और फिर भगवान ने क्या किया, अपने शंख को लिया और अपने शंख से ध्रुव महाराज के सर को स्पर्श कर दिया। और जैसे पुराने जमाने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करते थे, जब वो पिन जो है वो रिकॉर्ड को छूता था वो घूमते घूमते वो बोलना शुरू हो जाता था, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज के सर के ऊपर शंख का स्पर्श करने से ध्रुव महाराज के मुख से सुंदर स्तुतियां आने लगी भगवान की। भगवान के जो 4 आयुध होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, इनमें से 2 जो हैं पद्म और शंख, ये भक्तों के लिए है और चक्र और गदा ये दुष्टों के लिए है। तो उन्होंने चक्र का स्पर्श ध्रुव महाराज के सर से किया और सारा वेदों का ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकाशित हो गया एक क्षण में। ध्रुव महाराज को कोई वेदों को बैठ के पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल भगवान की कृपा से एक क्षण में सारे वेदों का ज्ञान हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी बैठे रहें कि कब वो दिन आएगा, हम कोई तपस्या नहीं करेंगे, हम भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, 16 माला जप नहीं करेंगे, कब वो दिन आएगा जब भगवान भी हमारे उसका पालन करना जरूरी है। तो ध्रुव महाराज का के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि जब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करता है तो भगवान सारा ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय के भीतर से ही प्रदान करते हैं, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में भी किया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि, कवि मतलब दार्शनिक, तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के आदि दार्शनिक हैं। जब उनका जन्म हुआ कमल पुष्प के ऊपर तो उनको यह नहीं पता चला कि सृष्टि का सृजन कैसे करना है, परंतु भगवान ने हृदय के भीतर से उनको सारा ज्ञान दिया। ठीक उसी तरह से ध्रुव महाराज के साथ भी हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि पेरी अलवार के साथ भगवान वटपत्रशाही की कृपा हुई। वटपत्रशाही ने पेरी अलवार को एक पात्र बनाया, एक माध्यम बनाया अपना ही गुणगान कराने के लिए। और जब गुणगान हो गया, एक चमत्कार हो गया, तो सारे लोग पीरियागार का गुणगान करने लगे। अब भगवान को यह भी बहुत पसंद है, अपने गुणगान से ज्यादा वो अपने भक्तों का गुणगान सुनना पसंद करते हैं। तो जितने भी सारे पंडित विद्वान वहां पर एकत्र हुए थे, उन सब ने पीरियालवार को उठाया और एक ऐसे हाथी के ऊपर बिठा दिया जो कि बहुत अलंकृत था, जो राजा के महल में था, विशेष हाथी। और उस हाथी के ऊपर बिठाया और एक बड़ा जुलूस निकला सारे राज्य में, राजधानी में। और जितने भी बड़े विद्वान थे वो आगे पीछे आमने सामने सब जगह खड़े थे। कोई चामर से उनको हवा दे रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई और व्यक्ति आके बाजा बजा रहा है, कोई जोर जोर से आवाज कर रहा है, गुणगान कर रहा है पेरियालवार की। देखो ये है विष्णु चित्त, जिनके हृदय में भगवान ने वेदों का सारा ज्ञान प्रकाशित कर दिया है। जोर जोर से सारे विद्वान गुणगान करते जा रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी, साथ साथ इस तरह से जुलूस निकला सड़क सड़क में जाकर, और जुलूस बड़ा होता गया। स्वयं राजा भी जुलूस में भाग शामिल हुए, उनके मंत्री भी शामिल हो गए। और देखिए पेरियालवार नम्रता से हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए हाथी के ऊपर बैठे थे। उनके मन में तनिक भी कोई घमंड नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को घोड़े पर भी बिठाया जाए, किसी छोटे से गाड़ी में भी बिठाया जाए, हाथी की बात तो ऊपर दूर है, उसके मन में तुरंत घमंड आ जाता है। लेकिन विष्णु चित्त या पेरियालवार इतने शुद्ध भक्त थे, तुरंत उन्होंने भगवान का शरण लिया। इसका मतलब है कि भक्त की पहचान यह होती है कि किसी भी अवस्था में उसकी नम्रता वो खो नहीं देता है। वो जानता है कि जो भी यश मुझे प्राप्त हो रहा है वो केवल भगवान की कृपा से, इसलिए ये श्रेय जो है ये भगवान का है, मेरा नहीं है। केवल भगवान ने मुझे एक निमित्त बनाया है। अब उधर भगवान वैकुंठ में देख रहे थे, बहुत अच्छी बात, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, अब पुरस्कार भी मिल गया मेरे भक्त विष्णु चित्त को, और उनका गौरव भी हो रहा है। लेकिन मैं खुद भी देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। जैसे कभी माता पिता होते हैं और स्कूल में बच्चे को कोई पुरस्कार मिलता है कोई खेल क्रीड़ा में, और पुरस्कार वितरण समारोह होता है, तो माता पिता भी आने के देखना चाहते हैं कि उनका लड़का जाएगा, फिर सबके सामने उसको पुरस्कार मिलेगा और लोग फोटो खींचेंगे, वाह वाह होगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी देखना चाहते थे, मेरे भक्त का गौरव हो रहा है, मैं भी देखना चाहता हूं। और जब भगवान आते हैं तो आप जानते हैं कि वो अकेले तो नहीं आते। कैसे आते हैं? अपने वाहन में आते हैं। हम लोग यहां साधारण कोई अपनी मारुति गाड़ी में, दूसरे गाड़ी में, स्कूटर में, साइकिल में आते हैं, लेकिन भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं। और ऐसे लग रहा था कि एक सांवले रंग का बादल जो है वो एक पीले रंग के पर्वत के ऊपर विश्राम कर रहा है, क्योंकि भगवान के शरीर का रंग क्या है? सांवला है, मेघ श्यामल कोमलांगो। और गरुड़ जी का रंग कैसा है? सोने का रंग है। और साथ साथ लक्ष्मी देवी भी, जहां भगवान विष्णु है वहां तो लक्ष्मी देवी होनी ही है, और साथ साथ उनकी सारी शक्तियां वहां थी, और साथ साथ सारे देवी देवता वहां पर आए, इंद्र, ब्रह्मा, शिव जी, सारे गंधर्व, किन्नर, चारण, सिद्ध, सारे लोक से, ब्रह्मांड से, अलग अलग लोकों से सब वहां पर आए। सब देखना चाहते थे भगवान के शुद्ध भक्त, पेरियालवार का गौरव हो रहा है। और जैसे वैकुंठ से आ रहे थे, अचानक पेरियालवार ने उनको देखा सामने से, और कोई नहीं देख सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने देखा कि पास में आए हैं। और उसमें भी पेरियालवार को बिल्कुल घमंड नहीं हुआ, वो तो हिल गए पूरी तरह से जब उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं अपने सारे पार्षदों को लेकर आ रहे हैं। तो इतने हिल गए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लिया कि अरे स्वयं भगवान आए। और फिर अपने मन को संभाल कर उन्होंने भगवान का शरण लिया। और उस समय उनके हृदय में जो स्नेह था भगवान के प्रति वो और उभर आया, अपने आप को रोक नहीं पाए, और उनके मुख से भगवान की स्तुति निकलने लगी। लेकिन ऐसे स्तुति की क्या बताया जाए, यह स्तुति कोई साधारण स्तुति नहीं थी, एक कविता के रूप में यह स्तुति निकली। वास्तव में इसको त्रुप पल्लांडु कहते हैं। पल्लांडु मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे को आशीर्वाद देता है, जैसे चिरंजीवी भव, कि तुम आयुष्मान भव, कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तो पेरियालवाद ने भगवान का दर्शन किया और भगवान का आशीर्वाद मांगा नहीं, आशीर्वाद दिया भगवान को, चिरंजीवी भव पल्लांडु पल्लांडु आप लंबी उम्र जिए, लंबी उम्र जिए। और बड़े स्नेह से, ये घमंड से नहीं था, ये स्नेह के वजह से था। क्यों स्नेह? क्योंकि हम आगे चल के अगली बार चर्चा करेंगे, इनकी जो सुंदर कविताएं हैं जो उन्होंने लिखी है, तिरुपंडाल है और दूसरा है पेरियालवार तिरुमोड़ी, जिसमें उन्होंने माता यशोदा का भाव स्वीकार किया है वृंदावन में और अन्य ब्रजवासियों का भी। तो इस तरह से उनका वात्सल्य भाव होने के नाते, जैसे एक माँ या माता या पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव, तो उसी तरह से उन्होंने भी भगवान के लिए ऐसे आशीर्वाद दिया और सुंदर स्तुति वो बोलने लगे, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तो जब ऐसे उनका गौरव होते जा रहा था, तो भगवान ने अपने भक्त का दर्शन किया, भक्त ने भगवान का दर्शन किया, फिर भगवान तो अपने धाम लौट कर चले गए। उधर सारा जुलूस समाप्त हो गया, राजा ने एक पदवी दे दी पेरियालवार को, पट्टर पिरान, मतलब जो ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार से जब पेरियालवार वहां पर बैठे हुए थे हाथी के ऊपर भगवान का दर्शन करते करते, और वो तिरुप पल्लांडु वो बोल रहे थे, भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे सुंदर स्तुतियों के रूप में, तो उनके हाथ में कोई करताल वगैरह नहीं था, तो हाथी के गले में जो घंटियां वगैरह थी उसको लेकर वो करताल के रूप में बजाकर ये गीत गाने लगे भगवान की स्तुति में। कहने का मतलब है कि भगवान का गुणगान करने के लिए कोई बंधन नहीं है, कभी हमारे पास करताल नहीं है, कहीं मृदंग नहीं है, कोई बात नहीं। कर ताल, कर ये हाथ है, हाथ को कर बोलते हैं, कर से ताल करो और हाथ से ताली मारो कीर्तन करते करते, कोई बंधन नहीं। शास्त्र में बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की कीर्तन के समय ताली बजाता है, तो उसके सारे पाप ऐसे भाग जाते हैं दूर उससे, कि जैसे जब व्यक्ति कोई वृक्ष के नीचे खड़े होकर जोर से ताली मारता है, तो उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पक्षियां डर से भाग जाती हैं। तो इस प्रकार से जब जुलूस समाप्त हो गया, तो पेरियालवार ने हृदय से आशीर्वाद दिया राजा वल्लभ देव को। राजा वल्लभ देव ने उनको बहुत पुरस्कार भेंट वगैरह दिए और इस प्रकार से वो वापस लौट के चले गए। अब उनका गौरव हो गया था, भक्त को कभी भी अपना गौरव पसंद नहीं होता है, और उनको लगा कि बहुत देर हो गया, मैं अपने वटपत्र शाही से दूर हूं, मेरी सेवा भंग हो गई, अभी कितने समय से मैं उनके लिए फूलों का हार नहीं बना पाया, ये गौरव छोड़ो अभी इसको, अभी हमको वापस जाना है। साधारण आदमी का विचार होता है कि जितना समय हमारा गौरव का अनुष्ठान चलता रहे उतना अच्छा है, लेकिन पेरियालवार सोच रहे थे कब ये खत्म हो जाए, कब मुझे जल्दी वापस मैं चले जाऊं और मेरे वटपत्र शाही की सेवा आरंभ करूं। फिर ये सारे भेंट उपहार वगैरह लेकर पेरियालवार वटपत्र शाही के सामने आए और उनके सामने उन्होंने इसको रख दिया, और रख कर उन्होंने एक श्लोक कहा जो पंचरात्र से है, जिसका मतलब ये है कि जो पत्नी है, जो दास है, जो पुत्र है, उनका स्वयं का कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो अपने नहीं है, इसलिए जो भी कुछ उनके पास है वो उस व्यक्ति का है। अगर पत्नी है तो पति का, दास है तो प्रभु का, पुत्र है तो पिता का। तो ये फॉर्मूला था पेरियालवार का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पुरस्कार मिला मैं ही इसका भोग करूं, नहीं, उन्होंने भगवान के चरण कमलों में ये अर्पण कर दिया और भगवान से कहा ये सब आपके लिए है, क्योंकि आप ही विजयी हुए, आपने उन सब विद्वानों को हराया, मैंने नहीं। इस संसार में एक बीमारी यह है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है, परंतु कर्ता हम नहीं हैं। गीता में भगवान बताते हैं, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं अपने आप को कर्ता समझते हैं, परंतु कर्ता कौन है? भौतिक प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस तमस ये साधारण व्यक्ति के लिए हैं, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए तीन गुण भी कर्ता नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान ही कर्ता होते हैं। क्योंकि भगवान प्रकृति से कहते हैं, ठीक है अभी मैं मेरे भक्त का भक्त को निजी अपने ही हाथों से संभालता हूं। जो भक्त नहीं होते हैं भगवान अपनी प्रकृति से कहते हैं कि अब तुम संभालो इन सबको, लेकिन जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त को संभालते हैं। तो इस प्रकार से पेरियालवार फिर से अपने प्रिय सेवा में लग गए और अपने फूल के बगीचे में आए और हर रोज जो है वो फूलों की माला बनाने की सेवा में लग गए। श्री पेरियालवार की जय। हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी?